नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन की संगति में सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। और साथ में मैं उन मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को सुनकर अपनी गवाहियां हम तक पत्र और फोन के माध्यम से पहुंचाते हैं। जब मैं आपके पत्रों को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सब भी जो पत्र नहीं लिखते हैं, फोन नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन की उन आशीषों को हम तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आज मैं आप सबको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि दानियल ने एक दर्शन देखा और उसमें हमने देखा कि चार पशुओं, चार धातुओं की मूर्ति और चार साम्राज्य या राज्य के बारे में हमने अलग अलग तरीके से देखे। आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें ताकि आज के इस अध्ययन के द्वारा हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करने पाएं। हमारे प्रेमी और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, महिमा आपको देते हैं पिताजी, क्योंकि सचमुच में आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, आपके वचन से मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को, हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाए। जिस प्रकार आपने दानियल से बातचीत किया, उसे सिखाया, हमें भी सिखाएं। पवित्र आत्मा, आप हम सब की सहायता करें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय बीमार हैं और आपके वचन को सुन रहे हैं। पिताजी, आप उन्हें छुएं, चंगाई दें, उनके हर एक कमी घटियों को आप दूर करें, अपनी शांति दे, ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे बलवंत किए जाएं, आपको महिमा दे सकें, आपको धन्यवाद देने पाएं। आज के अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक को निकाल लीजिए, परमेश्वर के वचन की संगति में ध्यान से बैठिए। दानियल ने रात में देखा कि महासागर पर चारों ओर से आंधी चलने लगी है और उसमें से चार पशु निकले जो एक दूसरे से भिन्न थे, परंतु चौथा पशु बड़ा विचित्र था। उसके लोहे के से दांत थे और 10 सिंह थे। और हम देखते हैं आगे, उकाब के पंखों वाला सिंह बेबीलोन का प्रतीक है, जिसमें नबूकदनेस्सर भी है। पद 17 में उन्हें चार राज्यों का प्रतीक बताया गया है। यह शेर बड़ा विचित्र है, जिसके पंख हैं। उकाब के पंख बेबीलोन की सेना का दूतगामी पलटन को प्रकट करते हैं। सेना का अति शीघ्र कहीं पहुंचना उसका विश्व शक्ति होने का प्रमाण है। तो आइए हम आगे बढ़ करके पढ़ेंगे दानियल के पुस्तक 7 अध्याय उसका 4 पद। लिखा हुआ है, पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंख के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। किसी सेना नायक से पूछा गया कि युद्ध जीतने का भेद क्या है, तो उन्होंने कहा सबसे पहले अधिक संख्या में पहुंचना। राजा नबूकदनेस्सर में यह गुण था कि वह अपनी सेना को कहीं भी अति शीघ्रता से पहुंचा देता था और इसी कारण वह विश्व विजेता भी हुआ। यही गुण सिकंदर महान का भी था और रोम का भी था। विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय तो वायु सेना द्वारा जीते गए थे। जो भी सबसे तेज सेना लेकर सबसे तेज चलेगा वही विश्व विजेता होगा। बेबीलोन के साथ यह सच था और भविष्य में भी यही सच होगा। हम देख रहे हैं कि उसके पंख नोचे गए, अर्थात वह मानसिक रोगी हो गया था। लिखा है मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया, वह पशु के समान हो गया, परंतु उसे पुनः स्वास्थ्य लाभ हुआ और फिर से वह राज्य करने लगा। उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। यह राजा नबूकदनेस्सर के मन परिवर्तन के संबंध में है। वह जीवित परमेश्वर को जान गया था। आगे हम देखते हैं शेर सोने के सिर हैं, बेबीलोन का प्रतीक है। आज तो वह खंडहर है, परंतु ये खंडहर भी उसके वैभव की गाथा सुनाते हैं। जैसा कि यर्मिया ने कहा था, उन खंडहरों में एक जगह एक गरिमामय शेर की मूर्ति है। पुरातत्व विभाग की खोज से उनका प्राचीन वैभव प्रकट होता है। बेबीलोन की हैंगिंग गार्डन विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्य कर्मों में से एक है। नबूकदनेस्सर की रानी पहाड़ी प्रदेश की थी और बेबीलोन मैदानी क्षेत्र में था, अतः उसने उसके लिए हैंगिंग गार्डन बनवाए। आप सबको पता होगा कि ये जो गार्डन है, ये जो बगान है, ये झूलता हुआ बगान है। यह उसने अपनी पत्नी के लिए बनवाए थे, उसे अपने घर की याद ना आए इसलिए। वे अत्यधिक सुंदर थे। वहां बाबुल के गुम्मट के सदृश्य एक ईंटों का मीनार भी था जिसके चारों ओर ऊपर जाने का मार्ग था, परंतु वहां नर बलि चढ़ाई जाती थी। बेबीलोन की डाक व्यवस्था उस युग में सर्वोत्तम थी। उनके स्नानागारों में पीतल की हौदियां थी। उनके पास पुस्तकालय भी था। उनकी शहर पनाह 300 फुट ऊंची थी और उसकी चौड़ाई इतनी थी कि 4 रथ एक साथ चल सकते थे। यही कारण था कि बेबीलोन अजेय था। मेरे मित्रों, हम देखते हैं सोना का सिर एक ओर तो उनकी सभ्यता का वर्णन करता है, तो दूसरी ओर शेर उनके निरशंस अन्य जाति व्यवहार को दर्शाता है। अध्याय 2 और 3 में हम इसे देखते हैं। आइए हम पढ़ें दानियल के पुस्तक 7 अध्याय उसके 5 पद में। लिखा है, फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। रिछ अर्थात भालू। भावी फारसी राज्यों का यह प्रतीक है। नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति के हाथ पांजर के बल उठा हुआ था, अर्थात पहले तो मादी भुजा बाई भुजा ने बेबीलोन को जीता, तदुपरांत दाहिनी भुजा फारसियों ने मिस्र और बेबीलोन के शेष भाग को जीता। लिखा है उसके मुंह में दांतों के बीच तीन पसलियां थी, अर्थात बेबीलोन साम्राज्य के तीन प्रांत बेबीलोन, लुदिया और मिस्र थे। रीछ के पंख नहीं थे। उससे कहा गया, उठकर बहुत मांस खा। मादी फारसी सेना रौंदते और गड़गड़ाहट करते चलती थी। वे तो अपने परिवारों को भी साथ ले जाते थे। शेयर्स ने 300,000 योद्धा और 300 युद्धपोत लेकर यूनान पर आक्रमण किया था, परंतु थर्मोपाइले में हार गया। उसकी नौसेना समुद्री तूफान में डूब गई थी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस समय पूर्व पश्चिम पर राज्य करे। जी हाँ, यह परमेश्वर की इच्छा थी। अब हम आगे पढ़ते हैं दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 6 पद में, जो दानियल के दर्शन है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान और एक जंतु है, जिसके पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। ध्यान दीजिए, चीता अपने असहाय शिकार पर बड़ी फुर्ती से झपटता है। यह सिकंदर के यूनानी राज्य का प्रतीक है। 4 पंख अर्थात अति द्रुतगामी सेना और फुर्ती से वार करना। उसके सामने नबूकदनेस्सर की सेना रेंगती सी प्रतीत होगी। आज मिसाइलें सेना में पंख लगा रही है। 4 सिर अर्थात सिकंदर के राज्य के 4 भाग और उनके 4 शासक। सिकंदर तो अपने युवावस्था में 30 के दशक में ही मर गया था। सिकंदर और बेबीलोन दोनों ही राग रंग में मारे गए थे। आज नशीले वस्तुएं खाने के प्रति चिंता जताई जाती है, परंतु शराब पीना सामाजिक व्यवहार माना जाता है। सिकंदर ने अपना राज्य विभाजित करके अपने 4 सेनापतियों को दे दिया था, क्योंकि वह जानता था कि संपूर्ण राज्य को संभालने वाला उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। कसांदर को मकीदुनिया, लिसेमेकस को एशिया माइनर, सेल्यूकस को सीरिया, जिसमें से अध्याय 8 का छोटा सिंह एंतियोकस एपिफानस था, जिसने यरूशलेम के मंदिर को नष्ट किया, और अंत में तोलमी ने मिस्र को लिया, जिसके बाद विलोपात्रा राज्य में आया। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र में यूनान का इतिहास नहीं है, क्योंकि वह पुराने और नए नियम के मध्य का युग है। यह वह समय था जब विश्वासी यहूदी समूह ने मिस्र और सीरिया के हाथों बहुत कष्ट उठाए थे। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सिंह हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, यह 10 सिंगों वाला पशु रोमी साम्राज्य है। नबूकदनेस्सर की स्वप्न मूर्ति के पांव, इसका अर्थ पद 19 से 28 में स्पष्ट है। परमेश्वर के आत्मा की व्याख्या हमें व्यर्थ कल्पना करने से बचा लेती है। इन 3 पशुओं से अधिक ध्यान 4th पशु पर दिया गया है। यह बाइबल अंश हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसी पशु के युग में वास कर रहे हैं। इस समय 10 सिंह और पांव की 10 उंगलियां अपने आप को उभार रही हैं। यह 4th पशु दानियल को एक अलग स्वप्न में दिखाया गया, क्योंकि यह पशु पूर्वोक्त 3 पशुओं से सर्वथा भिन्न है। वे 3 पशु तो आज भी जंगल या चिड़ियाघर में देखे जा सकते हैं, परंतु यह 4th पशु यह चौथा पशु बड़ा ही विचित्र और भयानक है। ऐसा स्वप्न देखने के बाद न तो एस्प्रिन की गोली या नींद की गोली काम करेगी। मेरे प्रियो, उस पशु को भयानक और भयंकर कहा गया है। वह बहुत शक्तिशाली था। यह पशु रोमी साम्राज्य का प्रतीक है और वह राज था भी अति शक्तिशाली। रोम का आतंक छाया हुआ था। लिखा है उसके बड़े बड़े लोहे के दांत थे। यह राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति के लोहे के पैर हैं। रोमी साम्राज्य, रोम के लोहे का पांव संसार की गर्दन पर लगभग 1000 वर्ष तक रहा था। रोमी साम्राज्य के विषय में बहुत अधिक चर्चा की गई है और आज भी की जाती है। मेरे मित्रों, इतिहासकारों के लिए रोमी साम्राज्य कुतूहल का विषय है। रोम के विषय गिब्बन कहता है, रोमियों का राज्य संसार पर छाया हुआ था और जब वह राज्य एक व्यक्ति के हाथ में पड़ गया तब संसार उसके वैरियों के लिए एक सुरक्षित एवं अंधकारमय बंदी गृह बन गया। विरोध करना घातक था और उड़ जाना असंभव था। हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट डी कल्वर ने अति उत्तम बात कही है। 2000 वर्ष पूर्व रोम ने संसार को जो विश्वव्यापी एकता प्रदान की थी वह संयुक्त राष्ट्र संघ आज देने का प्रयास कर रहा है। आज के प्रयास, जैसा कि आज के विचारकों का मत है, मूल प्रयास नहीं है, वरन प्राचीन रोम की विचारधाराओं का पुनरावलोकन है जो कैसर अगस्तुस के समय से आज तक विलोप नहीं हुए हैं। मेरे मित्रों, रोमी साम्राज्य बिखर चुका था परंतु वह यूरोप के अनेक राष्ट्रों में आज भी प्रभावी है। भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश और उत्तरी अफ्रीका आदि सब कभी रोमी साम्राज्य के भाग थे। रोम को कभी किसी ने नहीं जीता था। वह बस स्वतः ही विभिन्न राष्ट्रों में विभाजित हो गया था। इस विचित्र प्राणी के 10 सिंह थे जो राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति के पांव की 10 उंगलियों के तुल्य हैं। यहां जिस बात पर बल दिया गया है वह रोमी साम्राज्य के उदय पर नहीं परंतु उसके पतन पर है, अर्थात 10 सिंहों के समय पर। इस चौथे प्राणी का दर्शन हमारे लिए और अधिक महत्व इसलिए रखता है कि इसकी पूर्ति अभी नहीं हुई है। यह तो स्पष्ट है हम अंत समय में ही जी रहे हैं, या यूं कहें कि हम वास कर रहे हैं। पहले के 3 पशुओं का दर्शन तो पूरा हो चुका है, अर्थात इससे भविष्यवाणी का 3/4 भाग पूरा हो चुका है और अब शेष रहता है 10 सिंहों का समय। चौथे साम्राज्य रोम, जिसका उदय हो चुका है और वह बिखर भी गया है। यद्यपि रोम इस समय 10 राष्ट्रों में बिखरा हुआ है, वह फिर से संगठित होगा और उसको संगठित करने वाले को परमेश्वर के वचन में ख्रिस्त विरोधी कहा गया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दानियल ने स्वप्न देखे और इन स्वप्नों के द्वारा से हम इस बात को जान रहे हैं कि उसके स्वप्न 3 तो पूरे हो चुके हैं और अब एक है जो उसका एक भविष्यवाणी है और उसका पूर्ण होना बाकी है और हम उसी युग में हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रोम जो इस समय 10 राष्ट्रों में बिखरा हुआ है और वह पुनः संगठित होगा और जब यह संगठित होगा तब ख्रिस्त विरोधी उस पर शासन करेगा और प्रभु के लोग सताए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए यह दर्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दानियल द्वारा अपने दर्शनों का वर्णन है। जी हाँ, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दानियल 4 पशुओं को देखता है और उसमें से जो अंतिम पशु है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं वह रोम साम्राज्य है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वह ख्रिस्त विरोधी होगा, अर्थात वह मसीहियों के विरुद्ध में कार्य करेगा। आने वाले अध्ययन में हम इसके बारे में और अधिक देखेंगे कि यह किस प्रकार से एक ख्रिस्त विरोधी के रूप में कार्य करेगा। मेरे प्रिय मित्रों, जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार में आज भी विरोध है, परंतु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को सचेत करता है कि हम आने वाले समय के उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से अपने आप को बचाएं। जिस प्रकार से हमें बताया गया है कि जब हम पाप के दलदल में थे, हम बुराइयों में थे, हमारे जीवन गंदगियों में उलझे हुए थे, तब परमेश्वर ने हम मनुष्यों से प्रेम किया और हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया। उसने हम सारे मानव जाति के लिए, सिर्फ एक जाति और धर्म के लिए नहीं, परंतु सारे मानव जाति के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया। वह हमारे बदले में कोड़ों की मार सहा और हमारे ही बदले में वह क्रूस पर बलिदान हो गया। उसने अपने लहू बहाए सिर्फ इसलिए ताकि हम उस भयानक मृत्यु को ना पाएं। कहने का अर्थ यह है कि उसने हमारी कीमत चुकाई है। जिस सजा को हमें मिलनी चाहिए थी, उसे उसने ले लिया ताकि हम बच जाएं। वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज भी वह जीवित है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। यही कारण है कि सिर्फ हम प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत सारे मनुष्य और बहुत सारे महान व्यक्ति उत्पन्न तो हुए और वे मर गए, परंतु प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे और आज भी जीवित हैं, और वह चाहता है कि हम में से प्रत्येक मनुष्य बचाए जाएं। हम हर एक उद्धार को प्राप्त करें, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से हमारा उद्धार होता है। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु के पास आइए और उससे कहिए कि प्रभु, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मेरे जीवन में अनंत पाप हैं, आप मेरे पापों के बदले में क्रूस पर मरे, आज मैं जान गई हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए और अपनी शांति मेरे जीवन में दीजिए। जी हाँ, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है, आपके जीवन में शांति और आनंद प्रदान करता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार से हम यहाँ पर चार पशुओं के बारे में देख रहे हैं। एक है जो हमें विनाश की ओर ले रहा है, परंतु प्रभु यीशु पहले ही आ चुका है ताकि हम उस पर विश्वास के द्वारा बच जाएं। मेरे मित्रों, आइए मैं अंत में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि प्रभु आपको आशीष देने पाए। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए। इस समय जब उन्होंने आपके वचन को सुना है और वे आप पर विश्वास कर रहे हैं और अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, अपने पापों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं, आप उन्हें क्षमा करें, उनके जीवन में आए और उनके जीवन के हर एक पापमय गंदगियों से आप उन्हें छुटकारा दें, अपनी शांति उनके जीवन में दें, ताकि वे भी आपसे प्रेम करने पाएं, आपको आदर देने पाएं, आपका सम्मान करने पाएं। आज आप हमारे मध्य में रहे, हम सबसे बातचीत किया है आपने, धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना, इसके लिए भी धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप इस वचन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही लाभ प्राप्त किए हैं। आप प्रभु में बने रहें, प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
क्या हुआ जीवन क्यों चल बसा, घर आते आते राहें क्यों बदल गई, क्या हुआ संसार का, उसने सूली पे जान दी कि हम पाए नई जिंदगी, करना क्षमा।